नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के ताजा रुझानों के अनुसार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से बढ़त ली। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के आसार, तेलंगाना में टीआरएस का सत्ता पर कब्जा बरकरार रहने की संभावना। तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव तथा एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी और राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद मेघवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवार। मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथन होला चंपई दक्षिण और सचिप दोनों सीटों से हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न करने को कहा। और विश्व कप पुरुष हॉकी कप के दो क्रॉसओवर मैचों में आज बेल्जियम का मुकाबला पाकिस्तान से और नीदरलैंड का कनाडा से। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। तेलंगाना से अभी तक 32 परिणाम मिले हैं, जिनमें से 25 टीआरएस के पक्ष में गए हैं, कांग्रेस को 4 और एआईएमआईएम को 3 सीटें मिली हैं। मिजोरम से 23 और राजस्थान से 1 परिणाम मिल गया है। तेलंगाना में एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की शहजादी सैयद को चंद्रायन गुट्टा सीट से बड़े अंतर से पराजित किया। चारमीनार सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने भाजपा के महेंद्र को पराजित किया है। टीआरएस के उम्मीदवार डॉ संजय ने जगतियाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी टी जीवन रेड्डी को 60,000 से अधिक वोटों से हराया। कार्यवाहक मंत्री हरीश राव सिद्दीपेट सीट पर 80,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत गए हैं, जबकि टीआरएस उम्मीदवार चालाधर्म रेड्डी ने परकल सीट पर जीत हासिल की है। तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामा राव ने सिरिसिल्ला सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के महेंद्र पर 56,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। येलारेड्डी सीट पर कांग्रेस के सुरेंद्र ने टीआरएस उम्मीदवार रविन्द्र रेड्डी पर जीत हासिल की है। पंचायती राज मंत्री जे कृष्णा राव को कोलापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने हरा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है।
विधानसभा चुनाव परिणाम की जीत के रुझान के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद स्थित तेलंगाना भवन में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उत्साहित कार्यकर्ता नाचकर, मिठाइयां बांटकर, आतिशबाजी करके, टीआरएस के झंडे लहराकर, टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की तस्वीरें दिखाकर और विजय रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। माहौल में जय तेलंगाना और जय केसीआर के नारे गूंज रहे हैं। 119 विधानसभा सीटों में से 90 पर टीआरएस की बड़ी जीत से टीआरएस के और ज्यादा ताकतवर होकर उभरने की संभावना है। पार्टी का कहना है कि उसे पिछले 4.5 साल के विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का फल मिला है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
मिजोरम में अब तक 23 परिणाम मिल गए हैं, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में 16 सीटें गई हैं और वो 7 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं और वो 2 पर आगे है। चंपाई दक्षिण सीट पर उन्हें एमएनएफ के टीजे लल्लून तलवांगा ने 1,000 से अधिक मतों से, जबकि सिरचिप क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार लालदुहोमा ने 410 वोटों से पराजित किया। आइजोल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, पर एमएनएफ पार्टी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। आइजोल में पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल है, लेकिन अभी पूरी तरह जश्न मनाने के पल देखने के लिए कुछ घंटे और इंतजार करना होगा। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर बहुत कम है और सत्तारूढ़ कांग्रेस को 6 सीटें ही मिलते नजर आ रही है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। आइजोल से आयरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र कुमार।
राजस्थान से अभी तक मिले दोनों परिणाम भाजपा के पक्ष में गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद मेघवाल भीलवाड़ा जिले से शाहपुरा आरक्षित सीट जीत गए हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से निर्वाचित घोषित की गई हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट पर आगे हैं। इसी पार्टी के सीपी जोशी ने नाथद्वारा में बढ़त बना ली है। नोखा सीट से भाजपा के बिहारी लाल आगे हैं। भाजपा की सिद्धि कुमारी ने बीकानेर पूर्व सीट पर बढ़त बना ली है। उदयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार गिरिजा व्यास ने भाजपा के गुलाब चंद कटारिया पर बढ़त हासिल की है। कांग्रेस के सचिन पायलट टोंक सीट पर आगे हैं, जबकि सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खाचारियावास ने बढ़त बना ली है। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों प्रमुख दलों के नेता अंतिम निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अब तक के रुझानों के अनुसार प्रदेश में दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा सत्ता बनाने के लिए जरूरी 101 सीटों के जादुई आंकड़े से दूर हैं। हालांकि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मतगणना और रुझानों के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर आज सुबह से ही जश्न शुरू हो गया। वहीं भाजपा कार्यालय पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थिति पर नजर रखे हुए है। अब तक के रुझान 2008 में आए चुनाव परिणामों के दोहराव के संकेत दे रहे हैं। तब कांग्रेस ने 96 सीटें और भाजपा ने 78 सीटें जीती थी, जबकि 23 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत ने बसपा के 6 सदस्यों के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। अब तक के रुझानों के अनुसार कांग्रेस के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ में जो रुझान या परिणाम अब तक सामने आए हैं, उसका सीधा असर कांग्रेस और
मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच अब तक बराबरी का मुकाबला चल रहा है। कई दौर की गणना के बाद भी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस की टीम अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच है। नवीनतम रुझानों के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो आगे हैं, लेकिन उनके कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। इनमें नरोत्तम मिश्रा, बालकृष्ण पाटीदार, जयंत मलैया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, अंतर सिंह आर्य, दीपक जोशी, विजय शाह, रामपाल सिंह और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह भी सतना जिले की चुरहट सीट से पीछे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना में आगे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अजीत जोगी मरवाही सीट में पिछड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी रेणु जोगी कोटा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में आगे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता झंडे लहराकर अपनी खुशी जता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में जो रुझान या परिणाम अब तक सामने आए हैं, उसका सीधा असर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखा जा सकता है। लगभग 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में अपनी जोरदार वापसी का उत्साह रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखा जा सकता है। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार पार्टी के झंडे लहराकर और आतिशबाजी करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मायूसी और सन्नाटे का आलम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहली बार तीसरे मोर्चे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने जितनी सीटें अब तक हासिल की है, उतनी सीटें कभी भी यहां पर भाजपा कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को नहीं मिल पाई थी। कुछ इलाकों में तीसरे मोर्चे की यह जीत निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला और अथिरा थम्पी के साथ मैं हितेश रावत।
तेलंगाना में जो नेता मतगणना में आगे हैं, उनमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गजवेल से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी हजूरनगर निर्वाचन क्षेत्र में जारी मतगणना में आगे हैं। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण सर्वे सिकंदराबाद छावनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं। मिजोरम सरकार में मंत्री ललस्वाता आइजोल पूर्व द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएफ से रॉबर्ट रोमाविया रोयते से पीछे चल रहे हैं। वर्तमान विधानसभा में एमएनएफ विधायक के संगथुमा आइजोल पश्चिम प्रथम निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझान में मिजो नेशनल फ्रंट तीसरे दौर की मतगणना में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के रुझान इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी 109, कांग्रेस 111, बहुजन समाज पार्टी 4 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है, जबकि निर्दलीय 4 और अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के रुझान इस प्रकार हैं। कांग्रेस 55 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है, बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 4, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा के 11 परिणाम आने बाकी हैं। अब तक घोषित 30 सीटों के नतीजों में ताजा स्थिति इस प्रकार है। मिजो नेशनल फ्रंट ने 19 सीटें जीत ली हैं, 6 पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं, 1 पर वो आगे चल रही है। प्रिज्म पार्टी ने भी 1 सीट जीती है, 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब चुनाव परिणामों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया के साथ हैं निखिल कुमार।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभी तक के रुझानों से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह से विफल रहा है। श्री सिंह ने जीतने वाले विधायकों और राजनीतिक दलों को बधाई दी है।
बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विधायकों को विजय प्राप्त हुई है, जिन राजनीतिक पार्टियों को विजय प्राप्त हुई है, सबको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा,
Yes, we might be seeming to lose all the three Hindi heartland states over here. That does not mean the Bharatiya Janata Party will cow down in fighting against corruption. That does not mean that Bharatiya Janata Party will cow down in fighting for the people of this country.
कांग्रेस पार्टी नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अंतिम नतीजे आने तक स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस भाजपा विरोधी और समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों के समर्थन का स्वागत करेगी।
5 साल का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हम आम जनता का जो संघर्ष रहा, उसका ही परिणाम है कि आज जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका मैं आभारी हूं।
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि ये शुरुआती रुझान है और उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी।
अभी नतीजे पूरे आने दीजिए और जो मैंने कहा था कि कांग्रेस की विजय होगी, यस वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर गोइंग टू गेट फुल मेजोरिटी, नो क्वेश्चन अबाउट इट।
जनता कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत जोगी ने कहा,
कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिला कि उसने अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्थापित किया। कोई संघर्ष नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया और हमें बहुत संतोष है कि हम लोगों ने प्रदेश में एक तीसरी शक्ति हमेशा के लिए स्थापित कर ली।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और जनता की विजय है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि वे इन नतीजों को कांग्रेस की विजय न कहकर लोगों के गुस्से का इजहार कहना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन जरूरी हो गया है।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के परिणामों और रुझानों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार।
5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और इन 5 राज्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। दूसरी ओर तेलंगाना दक्षिण में और पूर्वोत्तर में मिजोरम, वहां भी चुनाव हुए थे और उनके भी नतीजे और ट्रेंड्स जो इस समय हमारे पास हैं, उनसे पता चलता है कि तेलंगाना में केसीआर की, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत ही कांटे की टक्कर है और राजस्थान में भी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट बिल्कुल सरकार बनाने की कगार पर है। वहां कांग्रेस का 10 साल पुराना शासन खत्म होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री ललथन हवला की कुर्सी बिल्कुल जाती दिख रही है क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट वहां पर करीब 24 सीटों पर आगे चल रहा है और टोटल 40 सीटें मिजोरम में हैं। और जहां तक बात करें राजस्थान की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों कांटे की टक्कर में, बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 98 पर, और मध्य प्रदेश में बीजेपी 108 सीटों पर है और कांग्रेस 111 सीटों पर। अब छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें नंद साहब, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत आगे है, 62 सीटों पर आगे है और बीजेपी केवल 22 सीटों पर। तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां कांटे की टक्कर है, और राजस्थान में बीजेपी पिछले 5 सालों से सत्ता पर काबिज थी, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, दोनों चौथा टर्म अपना लेने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते थे, मगर छत्तीसगढ़ में काफी एक सेटबैक, एक नुकसान हुआ बीजेपी को। कांग्रेस कमांडिंग पोजीशन में आ गई और लगभग तय है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। तो इन तीनों राज्यों के चुनावों में जो अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो रुझान और सीटें जिस तरह से जा रही हैं, उनको देख के आपको क्या लगता है?
ये पांच राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं या हुए हैं, इनमें से तीन हिंदी बेल्ट में है, एक दक्षिण की है और एक पूर्वोत्तर की है। तो देश का मूड आने वाले 2019 के चुनाव में क्या है, उससे इसका एक इशारा मिलता है। और जैसा कि आपने भी कहा कि पूर्वोत्तर में ये मिजोरम एक ऐसा अकेला राज्य रह गया था जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी नीति ये थी कि कांग्रेस को हम पूर्वोत्तर से पूरी तरह से हरा दें। और मिजो नेशनल फ्रंट को आगे करके भारतीय जनता पार्टी आज वो एक अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रही है, और अब पूर्वोत्तर में किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट तो लगभग दो तिहाई बहुमत से वहां पर सरकार बना रहा है, और इसलिए इसी तरह से तो पूर्वोत्तर का भी एक संकेत इस चुनाव में मिला कि वहां पर कांग्रेस को नकारा जा रहा है। और तेलंगाना में भी हम देखते हैं कि चंद्रशेखर राव ने पहले विधानसभा को भंग करके जो चुनाव करने का उन्होंने एक दाव खेला था वो उनको पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव आमतौर पर लोकसभा चुनाव के साथ होता है, तो उसको पहले करके चंद्रशेखर राव ये जताना चाह रहे थे कि हम अपने दम पर यहां पर तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और उसके बाद केंद्र का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, तो हमारी एक तरह से बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, हम तय करेंगे कि केंद्र में हम किसको हम समर्थन दें, ये बाद में देखा जाएगा। तो ये जो उन्होंने शुरुआत में एक पहल बढ़त ले ली और जिसके चलते वहां जो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है वो इसके लिए तैयार नहीं था, और उस तैयारी की कमी के चलते बाद में उनका कैंपेन शुरू हुआ और उनका जो अलायंस है वो भी शुरू में नहीं बन पाया। बाद में उन्होंने वो अलायंस तेलुगु देशम पार्टी के साथ किया, और मेरा मानना है कि तेलुगु देशम पार्टी को तेलंगाना में तेलंगाना विरोधी माना जाता है, और चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के निर्माण का मसीहा माना जाता है, और इसका लाभ पूरा का पूरा चंद्रशेखर राव को मिला और तेलंगाना सेंटीमेंट उनके पक्ष में गया, और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो बहुत भारी बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने तेलुगु देशम पार्टी को अपने साथ लेकर शायद गलती की है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो कांग्रेस के लिए एक तरह का बोझ बन गई, क्योंकि वहां पर तेलुगु देशम पार्टी पर ही सारा का सारा जो हमला था चंद्रशेखर राव बोलते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेलंगाना में और मिजोरम में कांग्रेस को सेटबैक लगी है। अब जहां हिंदी बेल्ट की बात है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ में यहां तक कि एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां कांग्रेस की बढ़त इतनी ज्यादा है कि अब शायद उसमें कोई बदल होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 90 सीटें हैं, वहां पर 1% के मतदान के अंतर से पिछली बार 10 सीट का अंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। तो अगर इस बार कांग्रेस के पक्ष में 3% वोट भी भाजपा से छटक कर गया है तो 30 सीटों का अंतर आ रहा है। वहां ये माना जा रहा था कि बसपा और अजीत जोगी ये मिलकर एक तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे, और जो भी वोट वो लेंगे या जितनी भी सीट वो लेंगे उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि उसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और उनका जो वोट शेयर है दोनों का मिलाकर उसके कारण वो सीटें भी कुछ वहां जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वहां स्पष्ट बहुमत लगभग मिल चुका है, ऐसा ये रुझानों से स्पष्ट है। और ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ में उनको लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है।
और मध्य प्रदेश में टंडन साहब 110 109 बहुत ही मतलब फोटो फिनिश जिसको कहते हैं।
देखिए मध्य प्रदेश में तो एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे थे कि दोनों पार्टियों में 1% मत का अंतर ऐसा कुछ बहुत नजदीकी है, और जो जिस तरह से रुझान चल रहे हैं उसमें इन दोनों में से कौन बाजी मार ले जाएगा ये आखिर तक भी पता नहीं चलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से वहां बसपा 3 सीटों पर आगे चल रही है, सपा 2 सीट पर है, आम आदमी 1 सीट पर है, निर्दलीय हैं, तो कहीं इसमें त्रिशंकु विधानसभा न बन जाए। और अगर मान लीजिए वहां त्रिशंकु विधानसभा आती है तो ये जो छोटे दल हैं इनकी बहुत ही अहमियत बढ़ेगी, और जो दल इनमें से सबसे बड़ा दल उभरेगा और वो सरकार बनाएगा, लेकिन वो सरकार बनाना और सरकार चलाना आसान नहीं होगा। और इसलिए देखना है कि क्या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी 116 का आंकड़ा छू सकती है कि नहीं, तो ये तो अंत तक मुझे लगता है इस बारे में असमंजस बना रहेगा। जहां तक राजस्थान की बात है, वहां शुरू से ये मान लिया गया था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है, लोग बहुत नाराज हैं, और जिसके चलते एग्जिट पोल में भी ये दिखाया गया था कि शायद कांग्रेस वहां पर 200 में से 150 सीट भी ले सकती है। इस परिदृश्य में जो चुनाव हुआ उसमें सभी लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार बनाएगी, और इसीलिए आखिरी दिनों में, आखिर के दो सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा जोर लगाया गया, आरएसएस की भी मशीनरी उसमें पूरी तरह से जुटी, और जिसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि परिणाम उतने बुरे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आ रहे जितने कि एग्जिट पोल में दिखाए गए थे। और लेकिन पिछड़ती हुई तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दिख रही है, लेकिन क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू पाएगी कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे भी चल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में त्रिशंकु विधानसभा आती है या दोनों में से कोई दल बहुमत प्राप्त करता है।
और इसी से जुड़ा हुआ पहलू है कि जिस तरह से तेलंगाना में ये कहा गया था कि विपक्षी एकता सामने, महाकुटुमी जो सामने आया था और दिल्ली में कल बैठक भी हुई, तो विपक्षी एकता को एक तो क्या इससे झटका लगा, दूसरा जैसे आपने इशारा किया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव जो होंगे उसकी तरफ भी ये एक इंडिकेशन है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इन दोनों पहलुओं के ऊपर अगर आपका असेसमेंट क्या रहेगा?
देखिए, जहां तक तेलंगाना को अगर हम देखें, क्योंकि हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता के बहुत पुरजोरदार समर्थक बन के दिल्ली में आए हैं और उन्होंने ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी,
मगर नतीजे विपरीत हो गए।
लेकिन वहां पर तेलंगाना का जो परिणाम आया उससे कांग्रेस के सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि क्या अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में और आंध्रा के भी चुनाव में वो टीडीपी के साथ जाएं या नहीं जाएं। और चंद्रशेखर राव की भी एक तो ये स्थिति होगी कि जिस महागंधन में चंद्रबाबू नायडू हैं और उसमें वो कैसे रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है तो उसे इन दोनों दलों के साथ कुछ ना कुछ एक तरह से तालमेल बनाना होगा। लेकिन हिंदी बेल्ट में तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति में जो सुधार हुआ है वो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट देगा, क्योंकि कांग्रेस को ही इन राज्यों में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है। तो जहां राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे कि वो तो हिंदी बेल्ट में और विशेष तौर से पश्चिमी भारत में नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे, इन परिणामों से ये बात तो स्पष्ट हुई है कि कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में चुनौती देने की स्थिति में आ गई है। और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी जितने भी सवालिया निशान लग रहे थे काफी हद तक उन पर असर पड़ेगा, और अगर तो वो तीनों राज्यों में सरकार बना लेते हैं तब तो आप मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने 2019 के चुनाव में,
कांग्रेस में भी एक नई ऊर्जा का संचार
होगा, कांग्रेस में भी होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।
बिल्कुल, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी।
धन्यवाद।
राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार, आप दोनों का इस चर्चा के लिए धन्यवाद। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना की खबरों के विशेष बुलेटिनों के प्रसारण को देखते हुए अपने नियमित बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किया है। शाम 6 बजे का अंग्रेजी और 6:05 का हिंदी बुलेटिन 10-10 मिनट के होंगे। रात 9:30 से 10:30 बजे तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होगा, जिसमें आकाशवाणी के आइजोल, रायपुर, भोपाल, जयपुर और हैदराबाद केंद्र दिल्ली स्टूडियो से जुड़े रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ अन्य खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
धन्यवाद लवलीन। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के दोनों सदनों में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आज सवेरे संसद से बाहर श्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और सदस्य हर मुद्दे पर खुले दिल से व्यापक चर्चा करेंगे।
सभी का ये प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाएं, लोकहित का कर पाएं, देशहित का कर पाएं, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो, खुल करके चर्चा हो, तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो। और इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी, हमारा आग्रह रहेगा कि ये सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करे, सारे महत्वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाएं।
उच्चतम न्यायालय ने आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न की जाए। न्यायाधीश मदन बी लोकुर की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में जिनमें आरोपी नाबालिग हो उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं की जाए। उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी से संबंधित जनहित याचिका दायर करने वाले वकील पर लगाए गए 50,000 रूपये के जुर्माने का आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जुर्माना भरे जाने के बाद ही वो याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा की बात सुनेगी। भुवनेश्वर में विश्व कप पुरुष हॉकी के दो क्रॉस ओवर मैचों में आज क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला होगा। पहले मैच में शाम 4:45 बजे बेल्जियम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जबकि 7 बजे नीदरलैंड्स और कनाडा आमने सामने होंगे।
धन्यवाद जागृति। और अब 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों पर एक बार फिर एक नजर। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में 199 के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें 21 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और शेष सीटों की मतगणना जारी है। भाजपा 5 सीटों पर विजयी रही है और 69 पर आगे है। कांग्रेस 11 सीटों पर विजयी रही है और 89 पर वो आगे है। बसपा 2 सीटों पर विजयी रही है और 2 सीटों पर वो आगे है। निर्दलीय और अन्य 3 सीटें जीत चुके हैं और 18 पर वो आगे हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के रुझान इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 106 और कांग्रेस 114 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के रुझान इस तरह है। कांग्रेस 58, भारतीय जनता पार्टी 24 और बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर आगे है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 4 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने 17 सीटें जीती हैं और 71 पर वो आगे है। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, 17 पर वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी 2-2 सीटों पर और निर्दलीय 1 सीट पर मतगणना में आगे है। अन्य पार्टियों के उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उधर 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा के 8 परिणाम आने बाकी हैं। अब तक घोषित 32 सीटों के नतीजों की ताजा स्थिति इस प्रकार है। मिजो नेशनल फ्रंट ने 21 सीटें जीती हैं, 4 पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, 1 पर वो आगे है। प्रिज्म पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं और 3 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महाकवि भरतियार के नाम से मशहूर तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल साहित्य के पुनरुत्थान की ज्योति जलाई थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त की थी। श्री नायडू आज नई दिल्ली में सुब्रमण्य भारती की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना के ताजा रुझानों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के आसार है। तेलंगाना में टीआरएस का सत्ता पर कब्जा बरकरार रहने की संभावना है। जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद मेघवाल तथा तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव और एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथन होला चंपई दक्षिण और सरछिप दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और विश्व कप हॉकी कप के दो क्रॉसओवर मैचों में आज बेल्जियम का मुकाबला पाकिस्तान से और नीदरलैंड का कनाडा से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।